ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 18 जून 2023 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य साहित्य परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ, अयूब। चुपचाप खड़ा रह और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। उत्तरदायी ध्यान, अयूब। देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वो तो हीम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मी को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। क्या तू घटाओं का तावलना और सर्वज्ञानी का आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्यहीन है और जिसका भेद हम नहीं पा सकते, वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। पाठ उपदेश बाइबल में से अयूब। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहनावा पहने हुए लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं। वो तो धूत लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ करता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वो बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरुण 7 से भी तेरी कुछ वाणी न होने पाएगी। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। तू वचनारूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा, और तुझे बिनेलिए जंतुओं से डरना लगेगा। वरुण मैदान के पत्थर भी तुझसे वचा बांधेंगे, और वना पशु तुझसे मेल रखेंगे, और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। राजे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि जाकर आपने आप को अखियब को दिखा, और मैं भूमि पर मी बरसा दूंगा। तब एलिय्याह अपने आप को अखियब को दिखाने गया। उस समय सामरिया में अकाल भारी था। फिर एलिय्याह ने अखियब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब अखियब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह किरमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुन्द्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, मैं कुछ नहीं देखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुन्द्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अखियब के पास जाकर कह कि रथ जुतवाकर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी, और अखियब सवार होकर यज्रियेल को चला गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अखियब के आगे आगे यज्रियेल तक दौड़ता चला गया। राजे। वहां वो एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वचा टाल दी, तेरी विधियों को गिरा दिया, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वो मेरे पुराणों की भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सामुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूनी डोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूनी डोल में ना था। फिर भूनी डोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो जंगल में मारुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे हुए वो विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया। मत्ती। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को ठीक किया और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वो उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वो नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वो पार उतरकर गेंसरत देश में पहुंच गए और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वो ठीक हो गए। आमोस। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरझाने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य सात ब्रह्मांड पर मन का नियंत्रण अब एक खुला प्रश्न नहीं है बल्कि विज्ञान है। शास्त्रों का अर्थ है कि ईश्वर सब कुछ है। इससे ये पता चलता है कि ईश्वरीय मन और उनके विचारों के अलावा किसी भी चीज में वास्तविकता या अस्तित्व नहीं है। शास्त्र ये भी घोषणा करते हैं कि ईश्वर आत्मा है, इसलिए आत्मा में सब कुछ समान जैसे है और कोई मतभेद नहीं हो सकता। भगवान के ब्रह्मांड में सभी कुछ उसे व्यक्त करता है। लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है। ध्रुव को सुई की ओर इशारा करना इस सर्वशक्तिमान या ईश्वर दिव्य मन के आकर्षण का प्रतीक है। क्योंकि परमेश्वर ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, ग्रहों का उसके निर्माता से अधिक मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं है। परंतु मनुष्य जो परमेश्वर की समर्थ को प्रतिबिंब करता है, सारी पृथ्वी और उसकी सीमा पर प्रभुता करता है। जिस अनुपात में मनुष्य को सभी वास्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्म शास्त्र को समझने के रूप में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को ऊपर उठाने और लहर पर चलने के रूप में प्रदर्शित करता है। इन सभी कर्मों से यीशु का विश्वास इस बात पर है कि ये जीवन का मध्यस्थ या अस्तित्व के किसी भी रूप का निर्माणकर्ता हो सकता है। ये धारणा के जानवर के चरित्र संभाव्यता बल दे सकते हैं, विचार के लिए बहुत ही बेतुका है। आध्यात्मिक महत्व के माध्यम से हमारे भगवान और गुरु ने बीमारों को ठीक किया, मृतकों को उठाया और हवाओं और लहरों को भी उसे मानने की आज्ञा दी। अनुग्रह और सत्य अन्य सभी साधनों और विधियों से अधिक शक्तिशाली हैं। श्रद्धा शक्ति एक भावतिक विश्वास है, एक अंधाग्राभित बल है, इच्छा की संतान है और ज्ञान की नहीं, नश्वर मन की है ना ही अमर की। ये सर का लंबा मोतियाबिंद, भाया यार प्रेम तूफान की सांस है, ये बिजली और तूफान है, ये सब स्वार्थी दुष्ट बेईमान और अशुद्ध है। नैतिक और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित हो सकते हैं जो मुट्ठी में हवा रखता है और ये शिक्षण विज्ञान और सिद्धभाव के साथ उच्च चरण करता है। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अच्छाई के लिए आपका प्रभाव आपके द्वारा सही पैमाने पर फेंके गए वजन पर निर्भर करता है। आप जो अच्छा करते हैं और उतार लेते हैं वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। तथाकथित गैसों और बल दिव्य मन की आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतिरूप हैं, जिनके सामर्थ्य सत्य हैं, जिनका आकर्षण प्रेम है, जिनका आसन जन और समान जैसे जीवन है, होने के तत्वों को नष्ट कर देते हैं। विद्योत भावतिकता का वो तीव्र अधिशेष है जो अध्यात्म या सत्य के वास्तविक सार को उद्घाटित करता है। महान अंतर यह है कि बिजली बुद्धिमान नहीं है जबकि आध्यात्मिक सत्य मन है। भूकंप, हवा, लहर, बिजली, अग्नि सबसे इच्छा गति में व्यक्त नश्वर मन का कोई वाष्पीभूत रोष नहीं है और ये तथाकथित मन सर्वनष्ट है। बुराई की अभिव्यक्ति जो ईश्वरीय न्याय का प्रतिकार करती है, शास्त्रों में कहा गया है प्रभु का क्रोध, वास्तव में वो त्रुटि या पदार्थ के आत्म विनाश को दर्शाते हैं और पदार्थ के विपरीत और आत्मा की सत्यात्व और ताकत को अंगित करते हैं। क्रिश्चियन साइंस सत्य और उसके विचार सब सार्वभौमिक सिद्ध भाव ईश्वर की पवित्रता, अच्छाई और बुराई को प्रकाश में लाता है। ब्रह्मांड मनुष्य की तरह विज्ञान द्वारा अपने दिव्य सिद्धांत ईश्वर से व्याख्या किया जाता है और फिर इसे समझा जाता है, लेकिन जब भावतिक अर्थों के आधार पर समझाया जाता है और विकास, परिपक्वता और क्षय के विषय के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है तो ब्रह्मांड जैसे मनुष्य है और होना चाहिए एक रहस्य है। आसंजन, समान जैसे और आकर्षण मन के गुण हैं, वो दिव्य सिद्धांत से संबंधित हैं और उस विचार शक्ति के उपासन हार का समर्थन करते हैं जिसने पृथ्वी को अपनी कक्षा में शुरू किया और गर्व की लहर से कहा यहां तक और इसके आगे नहीं। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, उन्हें वापस ले लें और सर्जन को धैर्य जाना चाहिए। मानव ज्ञान उन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य ज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं, इस मन में निहित हैं और इसलिए उन्हें उसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। भावतिक शरीर और भावतिक दुनिया एक तत्व और कार्य बदल जाएंगे जैसे नश्वर मन अपनी मनियताओं को बदल देता है। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरीय सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है जो मन के बहुसंख्यक रूपों को पुनः उत्पन्न करता है और यौगिक विचार मनुष्य के गुणों को नियंत्रित करता है। पेड़ और जड़ी बूटी अपनी स्वयं की किसी प्रसार शक्ति के कारण फल नहीं देते, बल्कि इसलिए कि वो उस मन को प्रतिबिंब करते हैं जिसमें सभी शामिल है। एक भावतिक दुनिया का अर्थ है एक नश्वर मन और मनुष्य एक निर्माता। वैज्ञानिक ईश्वरीय रचना अमर मन और ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड की घोषणा करती है। केवल प्रेम ही अनंत मन का असीम विचार प्रदान कर सकता है। भूविज्ञान ने कभी भी पृथ्वी की बनावट की व्याख्या नहीं की है, ये व्याख्या कर ही नहीं सकती। विज्ञान केवल एक मन को प्रकट करता है और ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है और ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। पूर्ण सिद्ध भाव में ये मन विचारों, अपनी स्वयं की छवियों, उपविभाजनों का निर्माण करता है और अपनी उधार ली गई बुद्धि को विकीर्ण करता है, और इसलिए पवित्र शास्त्र के वाक्य अंश की व्याख्या करता है, जिसका बीज अपने आप में है। इस प्रकार भगवान अपने विचारों से कहते हैं, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। दिव्य मन आध्यात्मिक सृजन की उच्चता, विशालता और अनंतता का समर्थन है। तथाकथित खांज, सब्जी और पशु अब पदार्थ या सामग्री संरचना से अधिक कास्मिक नहीं है। जब सभी के सितारे एक साथ गाते हैं, मन ने पृथ्वी में होने से पहले खेत का पौधा बनाया। आध्यात्मिक स्वर्गारोहण के काम मन की रचना के दिन और मौसम हैं, जिसमें सौंदर्य, उद्दता और पवित्रता। हाँ, दिव्य प्रकृति मनुष्य में प्रकट होती है और ब्रह्मांड से कभी गायब नहीं होती। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।